SBS रेडियो पर मैं हूँ आपके साथ अनीता बरार। आइए आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ जाने माने सितार वादक पूर्वेन चटर्जी के साथ। ये जाने जाते हैं अपने खास सितार की रचना के लिए, जिसमें है परंपरागत और आधुनिक ध्वनि का मिश्रण। वो सिर्फ 15 वर्ष के थे जब उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा उन्हें प्रतिष्ठित आदित्य विक्रम बिरला अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सितार वादक होने के साथ साथ वो गायक भी हैं। पुर्नेन्द्र जी ने पिछले 26 वर्षों में कई देशों में अपनी प्रस्तुति दी है और कई फ्यूजन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। आजकल वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं।
पंडित पूर्वेन जी, SBS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
SBS के लिसनर्स को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
आप यूं कहूं कि तारों की जो झनकार है उससे आप संगीत की रचना करते हैं, और
जी, कोशिश तो यही रहता है
जी। कुछ पारंपरिक होता है और कभी कभी फ्यूजन। तो इस तरह से ये जो फ्यूजन का दौर है कितना महत्वपूर्ण है?
जी देखिए, मेरा मानना ये है कि म्यूजिक इज अ लिटिल बिट लाइक जेनेटिक्स। जो DNA जो होती है ना, उसमें जितना वैरायटी आए वो उतना स्ट्रांग होता है। और अपना जो म्यूजिकल एक्सप्रेशन है ना, म्यूजिकल एक्सप्रेशन इज जस्ट अ नीड फॉर एक्सप्रेसिंग योर इमोशन। वो पूरे दुनिया में एक जैसा ही है। तो हर एक अलग अलग म्यूजिकल कल्चर्स होते हैं, उसका परिभाषा अलग अलग होता है। पर अगर देखा जाए तो एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर खुशी होती है, दुख होता है, गम होता है। ये इमोशंस जो है ये एकदम यूनिवर्सल इमोशंस है और ये हम म्यूजिक के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। तो जब एक तरह का म्यूजिकल कल्चर दूसरे तरह के म्यूजिकल कल्चर के साथ कोलाइड करता है, खासकर ये वर्तमान जो दुनिया है तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वी फाइंड अ कॉमन एक्सप्रेशन, अ कॉमन मोड ऑफ एक्सप्रेशन, जिससे कि कई कल्चर्स के साथ हम बात कर पाए। तो इसीलिए मुझे लगता है फ्यूजन का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल है मॉडर्न दुनिया में।
जी, तो क्या कहीं ऐसा लगता है कि जो विशुद्ध है उसकी पहचान कहीं खो जाएगी, एक नया नाम निकल आएगा?
देखिए, पहचान, हम लोगों की जो पहचान है, जिसको हम लोग ट्रेडिशन कहते हैं, रूट्स कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो भी बदलता हुआ चीज है। तो हम लोग, जैसे मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं भारत से हूँ, भारत का भी जो इमेज है और भारत का कुछ कुछ चीजें है जो आते जा रहे हैं, बहुत सारे जनरेशन से आते जा रहे हैं, और कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं है। वी हैव टू एम्ब्रेस द न्यू। और मुझे लगता नहीं है कि हमारे अंदर अगर ट्रेडिशन में दम है और अगर हमारा जो पहचान है उसमें अगर दम है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो का खो जाने का कोई खतरा है कहीं पे भी। द मोर वी आर रेडी टू एम्ब्रेस न्यू मोड्स एंड फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, द स्ट्रॉन्गर आवर पहचान विल बिकम।
जी, अब चूंकि आपने बात की है कि बदलता हुआ दौर है, तो उसमें तो तकनीकी ने तो बहुत कुछ बदल डाला है, बहुत कुछ आसान भी हो गया है। क्या आपको लगता है कि जो जो हमारा पारंपरिक संगीत है वो भी कैद हो गया है कहीं ना कहीं तकनीकी में, और उससे क्या बहुत चीजें आसान होने लग गई हैं, और उससे कितना संभव है उस तरह का संगीत आना जो सबके दिलों को छू भी ले और वो अपनी पहचान भी ना खोए?
देखिए, कोई भी शास्त्र, कोई भी जो मतलब कला है, उसके कुछ कुछ उसूल होते हैं, कुछ कुछ वैल्यूज होते हैं, वो उसको सही बरकरार रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हम लोग जिसको मॉडर्निज्म कहते हैं, जिसको जैसे टेक्नोलॉजी का इतना असर है, इतना बड़ा असर है दुनिया में, ये जो जितना भी मॉडर्न चीजें हैं उसको अपने बेनिफिट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी ट्रेडिशन, हम अब देखिए, अभी जिसको हम ट्रेडिशन कहते हैं, जिसके रखवाले हम अपने आप को समझते हैं, इतना गर्व बोध करते हैं कि हम लोग इसके रखवाले हैं, उसका जो प्रेजर्वेशन के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न चीज का इस्तेमाल करते हैं,
बिल्कुल
डिजिटल टेक्निक से रिकॉर्डिंग्स, पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स है उसको डिजिटाइज किए जा रहे हैं, और करना जरूरी है, आर्काइविंग जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पहचान में दम है, आपके जो ओरिजिनल द फाउंटेन हेड ऑफ द थॉट, अगर उसमें दम है तो आप उसको बेटर ही प्रिजर्व कर सकते हो इफ यू एम्ब्रेस न्यू टेक्निक्स, न्यू मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो हमारा जो संगीत अभी जिस मोड पे आया है, हम लोग अपना जो क्लासिकल म्यूजिक या फोक म्यूजिक के जरिए हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसको हम एक अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक के साथ घुल मिलके हम लोग ऐसा कुछ बना पा रहे हैं विच इज टॉकिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अदर म्यूजिकल कल्चर्स। सो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम अपने संगीत के जरिए इतने लोगों को पहुंच पाते।
जी, और आपने अपना रूट की बात की और जो आपने कहा कि जो बेस है वो इतना स्ट्रांग है, अब वो
जी
तो रियाज से आता है और सीखने से आता है, जो आपने बचपन से ही सीखा, अपने पिता से सीखा और आप दूसरे संगीतकारों से प्रभावित भी रहे हैं। कहते हैं ना कि जब आपको सिखाया जाता है बचपन में तो बहुत ही डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ता है, उस समय अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में कि एक डिसिप्लिन था, तो क्या अपनी उस यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएंगे?
आप देखिए, जब मेरी शिक्षा तो शुरू हुई जब मैं 3 साल का था,
जी
और जब मैं तकरीबन 5-6 साल का था तब 3 साल से मुझे पहले तो गाना सिखाया गया, फिर 5 साल का उम्र था तो सितार दिया गया हाथ में। आप देखिए, शुरू शुरू में क्या होता है ना, शुरू शुरू में यू हैव टू गेट योर रूट्स इनटू द
जी
ग्राउंड। तो उसके लिए जरा स्ट्रिक्ट जो अपने गुरु है, मेरे पिताजी मेरे गुरु थे और उसके बाद उस्ताद अली अकबर खां साहब, उस वक्त स्ट्रिक्ट होना जरूरी है कि एट दैट टाइम, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर सिंकिंग योर रूट्स इनटू द ग्राउंड। एक बार आप ने जमीन पे पकड़ अच्छा बना लिया, उसके बाद आप आसमान की तरफ जा सकते हैं,
जी
क्योंकि आप खड़े जिस जहां पे है, जो जमीन है वहां पे आपको स्टेबिलिटी अगर ठीक से नहीं मिला तो आप ऊपर की तरफ नहीं जा सकते।
जी बिल्कुल,
और
बहुत
उसके
ही
बाद
जी
गुरु का फर्ज बनता है कि एक हद के बाद आपको उड़ने दे आसमान की तरफ, वो भी है।
तो आपने एक तरह से जो हमारे नए जो संगीत प्रेमी हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, जो शायद अभी बहुत छोटे हैं या युवा हैं, उनके लिए आपने एक मूल मंत्र तो दे ही दिया कि डिसिप्लिन भी जरूरी है और साथ में जो टीचर हैं, जो गुरु हैं,
जी,
उनको भी जो शिष्यों के पंख है उनको फैलाने के लिए जगह देनी चाहिए।
बिल्कुल।
और SBS रेडियो पर मैं हूँ आपके साथ अनीता बरार, और आज हम बातें कर रहे हैं जाने माने सितार वादक पूर्वेन चटर्जी के साथ। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
इस बीच में, इस पूरी यात्रा में कई बार अवार्ड्स आते हैं, आपको भी सम्मानित किया गया। जब कोई सम्मान मिलता है वो आपको कितना इंस्पायर करता है और कितना वो आपके ऊपर बोझ होता है?
देखिए, सम्मान मिलना, रिकॉग्निशन मिलना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि आपके साथ आपके जो देश है, आपके जो अपने लोग हैं, या तो जो लोग ऐसे जाने माने, जो लोग जाने जाते हैं कि ये लोग जानकार लोग हैं, इनका जो रिकॉग्निशन, इनका जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनसे एहसास आपको ये मिलना चाहिए कि आप सही दिशा में हो। बट आउटसाइड ऑफ दैट, अवार्ड्स आर एन इल्यूजन, क्योंकि आपको लग सकता है, अगर अगर आप ऐसा सोचने लगोगे कि ये अवार्ड के वजह से मेरे कला में कुछ फर्क आने वाला है, या तो मेरी मेरी जिंदगी बदलने वाली है ये अवार्ड के वजह से, तो आप वो अवार्ड को बोझा बना लोगे, क्योंकि आर्ट इज नथिंग बट अ सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। एंड एन अवार्ड इज सर्टनली एन एक्सपीरियंस इन लाइफ, बट इट इज नॉट समथिंग विच हैज एडेड एनी वैल्यू टू योर म्यूजिकल और योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी। इट्स जस्ट अ लिटिल पैट ऑन द बैक, इट्स अ रिकॉग्निशन कि आप आगे बढ़ो, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो यू शुड टेक जस्ट दैट लिटिल एनकरेजमेंट फ्रॉम फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। क्योंकि आज आपको कोई एक अवार्ड मिलेगा, कल आपको लगेगा कि ये अवार्ड भी मुझे मिलना चाहिए, और शायद वो नहीं मिले आपको, वो नसीब की बात होती है। तो एक बोझा नहीं बनना चाहिए।
बिल्कुल। और जो आपने अनुभव की बात की, बहुत आपको अनुभव मिला है, अलग अलग लोगों के साथ काम किया है आपने, कोलाबरेट किया है। और मैं आपसे पूछना चाहती थी, शास्त्रीय सिंडिकेट जो
जी
आपका बैंड है,
जी
और जहाँ तक मुझे मालूम है ये शायद अपनी तरह का एक अकेला पहला, भारत का एक पहला बैंड है, तो
जी
ये
हाँ
कल्पना कहाँ से हुई और इसके अंदर क्या-क्या चीजें हो रही हैं? इसी के साथ आपसे ये भी पूछूंगी कि इसका जो अनुभव है, जो कोलैबोरेशंस हैं, हमारे साथ
जी
साझा कीजिए, शास्त्रीय
देखिए,
सिंडिकेट।
शास्त्रीय सिंडिकेट मैंने बनाया था तकरीबन आई थिंक 2008 2009 इस टाइम पे। और उस वक्त मेरे अंदर एक सोच था कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे बैंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो फ्यूजन जिसको बोलते हैं, तो
जी
मुझे लगा कि एक क्लासिकल बैंड क्यों ना बनाया जाए, जो क्लासिकल म्यूजिक के पैरामीटर्स के अंदर ही हम लोग कुछ खोजे। राग हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो राग संगीत है, तो रागों के अंदर ही हम लोग हिंदुस्तानी और कर्नाटिक मिला के हम लोग कुछ कुछ ढूंढे। तो उस वक्त फॉर्चुनेटली उसको काफी सक्सेस मिला और काफी लोगों ने बहुत पसंद किया उसका जो एल्बम था। एल्बम को भी IRA अवार्ड मिला, और इवन टाइम्स म्यूजिक में वो चार्ट्स पे था, बहुत लोगों ने सुना वो एल्बम। तो उस वजह से वो बैंड ने काफी दुनिया के अलग अलग देश में, जर्मनी में, कोपेनहेगन में, डेनमार्क में हम लोगों ने परफॉर्म किया, अलोंग साइड बैंड, इवन अलोंग साइड बैंड लाइक कोल्ड प्ले वी प्लेड इन इन वेरियस फेस्टिवल्स। और अभी ये साल मैं वो बैंड को रिवाइव कर रहा हूँ। उस वक्त उस बैंड में जितने तब तब के जो मेरे कंटेम्पररीज थे, जैसे राकेश चौरसिया, जयंती कुमरेश, जैसे अपना शुभंकर बैनर्जी, कुछ लोग इन इनमें से काफी, एक्चुअली सभी लोग एकदम बहुत बड़े स्टार्स हैं आज के जमाने में। शुभंकर दा तो अनफॉर्चुनेटली है नहीं हमारे बीच, वो चले गए कोविड की वजह से, बट बाकी के लोग दे आर बिग स्टार्स। और मैं बैंड को रिवाइव कर रहा हूँ नाउ विथ अ लिटिल फ्रेश न्यू यंगर टैलेंट, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि जब एक बैंड बनाया जाता है उसका जो सेकेंड जेनरेशन है या सेकेंड वर्जन है उसमें नए लोगों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। वी शुड ब्रिंग सम फ्रेश एनर्जी टू इट, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग।
और मैं साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि जो ये अलग अलग आपके कोलाबरेशन हुए हैं, जो अपने आप में एक आपके लिए एक यादगार अनुभव है।
मैं देखिए, मैं दो दो एक्सपीरियंसेस का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो मैंने एक एल्बम बनाया 2 साल पहले अनबाउंडेड करके, उसमें बहुत सारे ग्रैमी विनर्स हैं, जैसे बेला फ्लेक है, जैसे एंटोनियो सैंचेस है, जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन है, जैसे माइकल लीग है। एक एल्बम में शायद कभी आप देखा जाए रिकॉर्डेड म्यूजिक के हिस्ट्री में, एक एल्बम में इतने स्टार्स, शंकर महादेवन है उसमें, अपना जावेद अली है, एक एल्बम में कभी इतने सारे स्टार्स आते हैं। तो ये एक यादगार अनुभव मेरे लिए रहा है। और दूसरा एक क्लासिकल, जिसका भी काफी सारा प्रमोशन, अभी उसका एक सॉन्ग भी ड्रॉप हुआ है कली कल्याणी करके, क्लासिक कूल ये नाम का भी बहुत तारीफ किया है बहुत लोगों ने। क्लासिकल म्यूजिक को कैसे कूल, म्यूजिक को हम कूल नहीं बना रहे, म्यूजिक का जो परसेप्शन है उसको कूल बना रहे, जो लोग लोगों के दिल में या लोगों के दिमाग में जो बसा हुआ है कि क्लासिकल म्यूजिक एक बहुत ही ट्रेडिशनल, वो तो है ही, बट क्लासिकल म्यूजिक भी बहुत कूल है। और ये जो अपने जो उबर कूल जो जनरेशन है उनको क्लासिकल म्यूजिक कैसे सुनाया जाए, कैसे अलग अलग साउंड्स का इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है। और वही रेपर्टोर का परफॉर्मेंस हम लोग करने जा रहे हैं मेलबर्न में, क्लासिकल के जितने सॉन्ग्स है ये इसका टाइमिंग भी बहुत सही है, बिकॉज अभी क्लासिकल का EP ड्रॉप हुआ है, पेस ऑफ माइंड करके हमारा पहला सॉन्ग आया है आज, कल कल्याणी करके जो सॉन्ग दैट केम आउट। और मैं ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आई एम एबल टू ब्रिंग दैट रेपर्टोर टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड।
क्या बात है। और जैसे आपने बोला क्लासिक टूल, अब ये ही कहूंगी कि आपका जो संगीत है, जो आपकी मंशा है, कि संगीत जो है वो सबके दिलों को छुए, सीमाओं से अलग हट के छुए। और आपने जिस तरह से उसका एक ट्रैक का नाम है कल्याणी, हम यही चाहेंगे कि बस यही
बस संभव होता करते रहे।
और हमें आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द कॉन्सर्ट में। हम लोग इंतजार करेंगे आप लोगों और कुछ कुछ बहुत ही नया आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।